ओम शांति। हम सब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन जो जिस भी क्षेत्र में कार्यरत है उसमें यही चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में उसे सफलता भी मिले और सफलता का आधार कार्य क्षेत्र में जो आउटपुट है, जितना मैक्सिमम आउटपुट वो दे पाएगा उतना ही अधिक सफलता मिलेगी। तो मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से और व्यक्तिगत रीति से ब्रह्मा बाबा के साथ भी मुझे रहने का लगभग 7 वर्ष 62 में मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कॉन्टैक्ट में आया, जब मैं एक लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था, ग्रेजुएशन कर रहा था। और उसके बाद 63 से 67 तक धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंधित, अथवा कहें उसका एक क्षेत्र है अप्लाइड जियोफिजिक्स। और उसके बाद ब्रह्मा बाबा से कई बार पहले तो मिले थे, और लेकिन बाबा के पास गए, बाबा से डायरेक्शन ले करके ONGC ज्वाइन किया। और बाबा में हमने क्या क्या देखा वो हम सुनेंगे, क्योंकि इसके बाद भी और लेक्चर हैं, तो वी विल बी मूविंग जस्ट लिटिल फास्ट, लेकिन स्लाइड्स हैं इसलिए मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी। शांति की शक्ति के बारे में तो बहन जी ने आपको काफ़ी बताया। शांति मीन्स कोई मुख का मौन ही नहीं, बल्कि अधिकतर संकल्पों का, हमारी वृत्ति का, हमारे विचारों का जितना मौन अर्थात शांति में हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, उतना ही फिर वायुमंडल बनता है। जैसी वृत्ति होती है वैसे वाइब्रेशन होते हैं, ऑरा होता है, और वैसा वायुमंडल। तो हम अभी देखेंगे कि किस प्रकार से बाबा जो अकेले थे शुरुआत से ही, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी इसमें सम्मिलित है, वो मृचा पिता ब्रह्मा बाबा उनके द्वारा किस प्रकार से कार्यरत 1936-37 में, उस समय उनकी आयु लगभग 57-58 वर्ष की थी। उससे पहले वो बहुत हीरे जवाहरात के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे, तो हाई परफॉर्मेंस तो उनकी थी ही। एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लिया था, टीचर उनके पिता थे, मास्टर जी प्राइमरी स्कूल में, तो आप समझ सकते हैं बहुत ही साधारण। लेकिन अपने निपुणता से वह इतने अधिक आगे बढ़ गए कि कुछ समय में ही वह हीरे जवाहरात के बहुत प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। और उसके बाद उन्होंने जिस संस्था की स्थापना की वो आज आप देख ही रहे हैं, जिनके लगभग 140 देशों में केंद्र हैं। तो इनका नाम दादा लेखराज था, उन्हें सब स्नेह से लखीराज बाबू बोला करते थे, और सब दादा इसलिए कहते थे, सिंधी में एल्डर ब्रदर को दादा और एल्डर सिस्टर बड़ी बहन को दादी बोलते हैं। तो इस तरह लखीराज बाबा ये थे, और ये उनका लौकिक परिवार था, पति पत्नी और उनके बच्चे। और जैसे साधारण रीति से होता है, सब धन धान्य से परिपूर्ण थे, तो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था उनका। और इस जीवन के साथ साथ लौकिक परिवार विशेषता यही थी कि ये सब होते हुए भी, इतना हीरे जवाहरात के व्यापारी होते भी, बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे बाबा। दान पुण्य बहुत, उन पे तो धन काफी था, लेकिन वो दान अधिकतर दान पुण्य में वो धन इस्तेमाल होता था, गरीबों की सेवा में, और जिनको कोई भी सोशल नीड्स की आवश्यकता होती थी उनमें तो देख रहे हैं आध्यात्मिक साधु संत आदि उन सबको भी दान पुण्य करते बाबा नजर आ रहे हैं इसमें सॉरी। लेकिन ये सब होते हुए भी वो सत्य की खोज में ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश करते थे। अनेक उन्होंने गुरु भी किए, सत्संग में जाते थे, तीर्थ स्थानों में जाते थे, जहां जहां मान्यता है कि भगवान के दर्शन होंगे प्राप्ति होगी उन सब में वह जाते रहते थे और इस प्रकार से सत्य की खोज में सदा लगे रहते थे। एक बार वो इसी प्रकार से अपने मित्र जो वाराणसी में थे, ये इससे पहले मैं ये बता दूं कि दादा का ये व्यापार जो है उस समय मुख्य मुख्य 5-6 शहरों में दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, कराची, हैदराबाद, उस समय तो अनडिवाइडेड इंडिया था, पाकिस्तान और भारत, ये बात हो रही है सन 1936-37 की। तो उस समय बाबा अपने मित्र के यहाँ एक बार गए, जाते रहते थे, उनके मित्र बनारस में रहते थे और वहाँ पर एकांत के लिए बाबा जाते थे, सत्य की खोज में रहते थे। बनारस बहुत बड़ा आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है, तो वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि आदि सब जगह बाबा जाते रहते थे। तो वहाँ पर एक बार ऐसे ही शांति की शक्ति जो बहन जी ने बताई, शांति में विचारों के ऊपर नियंत्रण करके बैठे थे तो बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। वो विष्णु के भक्त तो थे, इस कारण से विष्णु का चित्र उनके पॉकेट में भी रहता था और साथ साथ ड्रॉर में जहाँ पर बिजनेस का उनका पैसा वगैरह और बिजनेस करते थे। तो जब विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, आप इमेजिन कर सकते हैं जिसके हम भक्त हों उसका साक्षात्कार दीदार हो जाए कितनी प्रसन्नता होगी। बहुत उन्हें अथाह प्रसन्नता हुई और वो उन्होंने विष्णु के इस प्रकार से 4 अलग अलग रूपों के साक्षात्कार किए। भारतीय संस्कृति में विष्णु जी के अलग अलग रूपों का वर्णन है और मुख्य रीति से तो चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाएं उनके प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दो भुजाएं उनका प्रतीक। और इस प्रकार से बाबा को जब साक्षात्कार हुए, बाबा ने सोचा शायद गुरु जी ने मुझे साक्षात्कार कराया। गुरु जी के पास गए लेकिन गुरु जी तो अनभिज्ञ थे, उन्होंने कहा भाई मैंने खुद ही साक्षात्कार नहीं किया कभी, मैं तुम्हें कैसे कराऊंगा। तो फिर बाबा को यह हुआ कि भगवान ने मुझे साक्षात्कार कराया, उनकी निष्ठा ईश्वर के प्रति और अधिक बढ़ गई। और उसके बाद बाबा को अनेक साक्षात्कार हुए और उनमें जो मुख्य साक्षात्कार हुए, एक साक्षात्कार हुआ सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन, क्योंकि ये सृष्टि कभी भी संपूर्ण विनाश को पाती ही नहीं है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के 3 मुख्य रूप देखे, एक तो एटॉमिक वार के द्वारा एटम बम गिर रहा है और उन समय 1945 से पहले किसी ने एटम का नाम भी नहीं सुना था, तो भी बाबा ने देखा एटम जैसे गिर रहा है एटम बम। और एक्चुअल में तो हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 45 में उसका प्रयोग हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 40s के आसपास बाबा ने एक ये साक्षात्कार, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं और एटम बम के द्वारा क्या विनाश होता है वो हम सबसे क्या किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। दूसरा परिवर्तन का साक्षात्कार बाबा ने किया सिविल वार के द्वारा। सिविल वार माने डिफरेंट कम्युनिटीज का आपस में भेदभाव है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई आदि आदि, बौद्धी, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जिसका एक रूप भारत और पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान बना तो हिंदू मुस्लिम के उसमें जो बहुत बुजुर्ग होंगे उन्होंने देखा किस प्रकार से कत्ले आम हुआ और खून की नदियां बही, वो दूसरा स्वरूप। और तीसरा परिवर्तन का स्वरूप बाबा ने देखा जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश बेहद में भी हैं और हमारा शरीर भी उन्हीं पांच तत्वों की उत्पत्ति है। तो उनके द्वारा बहुत भयंकर परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी के द्वारा एकदम अर्थक्वेक्स, इतने भूचाल आ रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी इंटेंसिटी के, वो देखा बाबा ने। पानी के द्वारा देखा सुनामी आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, साइक्लोन्स वगैरह के द्वारा देखा आदि आदि। आकाश के द्वारा बादल फट रहे हैं और आप सबने देखते ही होंगे न्यूज वगैरह में जब ऐसा होता है कितना भयंकर विनाश, विनाश इन द सेंस लाखों हजारों लोग मर जाते हैं। और ये परिवर्तन देख करके बाबा एकदम जैसे भौचक के रह गए, उन्हें समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो तो वैसे ही हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, भक्त जरूर थे, लेकिन भक्त होने के साथ साथ ये क्या परिवर्तन हो रहा है ये समझ नहीं सके। तो उनके मुंह से निकला, हे प्रभु बस अब मुझे अपना मोहनी रूप दिखाइए, जैसे गीता में अर्जुन के द्वारा कहा गया है। वास्तव में ये ही गीता रिपीट हो रही थी, गीता के महावाक्य अर्जुन के रूप में ब्रह्मा बाबा परमपिता परमात्मा शिव से, क्योंकि उनको ये तो हुआ था कि ये परमात्मा साक्षात्कार उन्हें करा रहा है, उनकी तो मेरी तो कोई क्षमता नहीं है। उन्हें सदा ये रहता था कि मैं ये करता, इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसका साक्षात्कार के साथ साथ और उन्हें क्या साक्षात्कार हुआ, विके बहुत आसमान में एक ऐसे स्टार 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 है, सितारों की दुनिया है एक कंसंट्रेटेड। वैसे सितारे तो आकाश में दिखते ही हैं, लेकिन एक जगह लगभग लाल रंग का प्रकाश और वहाँ ये सितारे सितारे जैसे। तो देखा उन्होंने, समझ नहीं सके ये सितारे क्या हैं। वास्तव में वो सितारे आत्माओं के प्रतीक थे और वो आत्माओं का निवास स्थान परम धाम का, ईश्वर का साक्षात्कार उन्हें हुआ। ये सब इसलिए कि ये साइलेंस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि जैसा बहन जी ने बताया आप भी साइलेंस का जब अनुभव करेंगे तो मानसिक रीति से हम सब परम धाम जाने का प्रयास भी करते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो अथाह शांति का अनुभव होता है। तो ये परम धाम का साक्षात्कार कर किया और फिर तुरंत ही उन्हें साक्षात्कार हुआ कि परम धाम से ना ये आत्माएं जैसे आ रही हैं, नीचे सितारे उतर रहे हैं और आते उतरते उतरते उन्हें नीचे आते ही कोई राजकुमार कोई राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे ही, और बस नाच रहे हैं गा रहे हैं, सुख की दुनिया है। उसी को भारतीय संस्कृति में कहीं स्वर्ग बोला गया है, कोई पैराडाइज बोलता है, कोई बहिष्ट बोलता है, कोई अल्लाह का की नगरी बोलता है आदि आदि। इस प्रकार से उसी को ही सतयुगी दुनिया कहा गया। तो बाबा ने देखा वो सितारे उतर रहे हैं और नीचे आकर के वो जैसे कि इसमें परिवर्तित हो रहे हैं। बस बाबा ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, ऐसी दुनिया देख कर गए। सदा बाहरी मौसम है, कोई दुख का नाम निशान नहीं है, कोई कलह कलेश नहीं है, बीमारी नहीं है, कष्ट नहीं है, ऐसी दुनिया देख के बाबा एकदम खुश, बहुत बहुत प्रसन्न हो गए। और उस दुनिया को ही भारतीय संस्कृति में स्वर्ग भी कहा जाता है। और उस स्वर्गिक दुनिया को देख करके बस बाबा का दिल एकदम बहुत प्रसन्न चित हो गया। लेकिन साथ ही साथ बाबा को एक आवाज भी सुनाई पड़ी कानों में। क्या आवाज सुनाई पड़ी? तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, तुम्हें इस दुनिया का निर्माण करना है। बाबा तो कुछ समझ नहीं सके कि मैं ध्यान से उतरे, कौन था, किसकी आवाज थी, मैं कैसे इस दुनिया का निर्माण करूंगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। बस जैसे अपने आप से ही बात कर रहे हैं किसने कहा। लेकिन फिर धीरे धीरे जब बाबा ने ये दोनों ही साक्षात्कार किए, एक तो विनाश यानी परिवर्तन का जो आपको बताया, एटॉमिक वेपन, कम्युनल वार और जो प्राकृतिक आपदा है उसके द्वारा सृष्टि का परिवर्तन, और दूसरा ये स्थापना, स्टार उतर रहे हैं, राजकुमार राजकुमारी जैसे बन रहे हैं। तो जब दोनों का साक्षात्कार किया और बाबा को ये आवाज सुनाई पड़ी तो बाबा एकदम थोड़ा भौचक्के रह गए। लेकिन तब से बाबा के जीवन में बहुत परिवर्तन एकदम प्रारंभ हो गया। वो मौन का अभ्यास करने लगे, एकांत प्रेमी और ज्यादा हो गए। और तभी उन्होंने अपना इतना बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापार था, इतने 5-6 शहरों में जो बताया आपको, उन सब में बड़े बड़े जो कैपिटल सिटीज थे इंडिया और पाकिस्तान के, तो उनमें था। लेकिन बाबा का ध्यान जैसे उससे हट गया और बाबा ने धीरे धीरे कहा अपने पार्टनर को कि भाई अब मैं ये सब नहीं करना चाहता, अब मैं सच्चा हीरों का व्यापार करना चाहता हूँ, यानी मनुष्य आत्माओं को कलयुगी दुनिया से बदलकर सतयुगी दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। ये जितने हीरे जवाहरात का व्यापार है इसे तुम संभालो। तो बिजनेस पार्टनर ने कहा बाबा मैं कैसे संभालूंगा, मुझे तो इसका कुछ मालूम ही नहीं है, मैं पहचानता ही नहीं। कि नहीं, बस मुझे तो वैराग्य। और बाबा को उधर से ध्यान खिंच गया, वैराग्य आने लगा, उनके अपने जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। और फिर बाबा ने एक बार साक्षात्कार किया लाइट का, ज्योति स्वरूप का, कि एकदम एक लाइट लाइट ज्योति है। और जो आप देख रहे हैं चित्रों में भी, ऊपर जो लाल लाल अंडाकार शेप में, वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव हैं, जो जिन्हें हम भगवान परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को हम लोग कोई भी ना भगवान कहते हैं ना गुरु कहते हैं, वो भी हम सब की तरह हैं, बस हमारे में ही एक बड़े नंबर वन एल्डेस्ट ब्रदर कहें इस डिवाइन फैमिली के, इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। तो परमात्मा का साक्षात्कार जो ज्योति स्वरूप दिखाया यहाँ पर आप देख रहे हैं, उस ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार किया उन्होंने, बस ज्योति ज्योति। और उस ज्योति स्वरूप के साक्षात्कार के साथ साथ बाबा को ये अनुभव हुआ हाँ कि ऊपर से ये परमात्मा शिव उनके शरीर में जैसे प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं एक आत्मा जो ब्रह्मा बाबा के ललाट पर दिख रहा है, वो तो उनकी अपनी आत्मा है। और ऊपर जो लाल शेप बताया है निराकार परमात्मा शिव का प्रतीक, वो परमात्मा, अब वो तो निराकार है, बोलेगा कैसे, बोलने के लिए मुख का आधार चाहिए, देखने के लिए आंखें। अब निराकार में तो कहीं आंख नाक कान मुंह होता नहीं, इसीलिए बाबा ने उनका आधार लिया। और उसके बाद ये तप का प्रतीक है, वो गुरु के तो बहुत गुरु के प्रति उनके जीवन में बड़ा आदर सत्कार था। एक बार गुरु को इनवाइट भी किया हुआ था उन्होंने, गुरु का सत्संग कर रहे थे, तो सत्संग करते करते एकाएक उन्हें कुछ अंदर से विचित्र प्रेरणा आई, वो सत्संग से उठकर खड़े हुए, अपने कमरे की तरफ चल दिए। अब उनकी पुत्रवधु ने देखा, उनकी पत्नी ने देखा, बाबा कभी सत्संग से तो ऐसे उठते नहीं हैं, तो बाबा के वो कैसे उठे, तो उनकी पुत्रवधु भी उनके पीछे पीछे गई देखने, बाबा की तबीयत तो ठीक है ना, क्यों उठ के बाबा जा रहे हैं। देखा उसने बाबा गए, अपने कमरे में जाके बैठ गए चारपाई पर, पलंग पर, और बस ध्यान में मग्न हुए। और एकाएक ही कमरा लाल लाल प्रकाश से भर गया। उनकी पुत्रवधु दरवाजे के पास से ही देख रही थी कि बस कोई ज्योति आई और वो ज्योति बाबा में प्रवेश करी। फिर ज्योति जाती थी आती थी, यानी ज्योति का स्वरूप अलग, परमात्मा ब्रह्मा बाबा का स्वरूप तो ये देहधारी का। तो इस प्रकार से देखते हुए हुए और ज्योति जब बाबा के शरीर में प्रवेश किया तो सबसे पहले पहले उस बाबा के मुख से जो महावाक्य निकले, उस ज्योति ने, शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा जो महावाक्य उच्चारे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं आत्मा आनंद स्वरूप, परमात्मा शिव के महावाक्य हैं, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है। इस प्रकार से परमात्मा ने अपना परिचय दिया, जो शिव को बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वो परिचय स्वयं परमात्मा ने आकर ब्रह्मा मुख के द्वारा अपना परिचय दिया। और ये तीन महावाक्य सबसे पहले परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा, शरीर के द्वारा उच्चारित किए। बस ये उनकी पुत्रवधु ने अपनी आँखों से भी देखा, और उसके बाद तो फिर बाबा को जैसे धीरे धीरे संसार से और वैराग्य होने लगा। और ये वैराग्य में क्या होता था, बाबा ध्यान में बैठते थे सत्संग में, तो बाबा को देखते देखते किसी को बाबा दिखना अदृश्य हो जाता था, उसकी जगह श्री कृष्ण दिखाई देते थे। कभी श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, कभी ब्रह्मा बाबा, कभी सतयुगी नई दुनिया, कभी बस छोटे ये राजकुमार राजकुमारी बच्चे रास कर रहे हैं, पुष्पक विमान उड़ रहे हैं, नई दुनिया का प्रतीक, बहुत हरी भरी प्रकृति। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा को देखते देखते उन्हें ये सब देखने वालों को साक्षात्कार होते थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जब ये दिव्य ज्ञान की कुछ अनुभूति हुई, उन्होंने घर में सत्संग शुरू किया, और वो सत्संग का नाम धीरे धीरे वो ओम से, चूंकि सत्संग शुरू होता था इसलिए उसको ओम मंडली कहने लगे सब लोग, और नाम पड़ गया ओम मंडली। लेकिन विशेषता यही थी कि आते थे लोग, सत्संग करते थे, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ज्ञान सुनाते थे, लेकिन देखने वालों को कई बार ब्रह्मा बाबा का, कई बार श्री कृष्ण का, नई दुनिया का साक्षात्कार होता था। और इस प्रकार होते क्यों, उसका भी रहस्य फिर परमात्मा शिव ने बाद में बताया कि ये जो ब्रह्मा बाबा का द्वारा श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हो रहा है, इसका राज ये है कि ब्रह्मा बाबा जो इस जन्म में दादा लेखराज थे पहले, फिर परमात्मा ने उनका नाम बदल के प्रजापिता ब्रह्मा किया, तो ये वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा है। अपने प्रथम जन्म में, कल्प के पहले जन्म में बाबा का श्री कृष्ण के रूप में थे, और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंत में आते आते इस समय वो ब्रह्मा के स्वरूप में है, और पहले जन्म में उस समय सतयुग में थे, श्री कृष्ण के रूप में थे। तो श्री ब्रह्मा सो श्री कृष्ण और सो श्री नारायण। नारायण क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण इनके बचपन के चित्र मिलते हैं अथवा लगभग थोड़ा युवावस्था के, और लक्ष्मी नारायण जो हैं उनके अधेड़पन के पिक्चर मिलते हैं, और लेकिन उनके बचपन के पिक्चर नहीं मिलते हैं। वास्तव में राधा कृष्ण बचपन में नाम है, और जब दोनों का स्वयंवर होता है तो आज भी भारतीय संस्कृति में जो बहन होती हैं मैरिड होती है उसका गोत्र बदल जाता है, और सतयुग में ये प्रथा थी कि जब मैरिज होती थी तो दोनों का ही नाम बदल जाता था। राधा का नाम जैसे श्री लक्ष्मी, कृष्ण का नाम श्री नारायण, इस प्रकार से वो प्रथा वहां से चलती। ये तो डिटेल आपको और भी ज्ञान में जैसे आगे बढ़ेंगे सुनना मिलेगा। तो बाबा ने जब ये सत्संग शुरू किया तो उस सत्संग में बहुत आने लगे धीरे 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 करके, परिवार के परिवार और सब आते थे बाबा को देखते देखते, श्री कृष्ण को देखते थे। पूरे शहर में ये हो गया, अरे वहां तो भगवान के दर्शन होते हैं। और ऐसे ही देखते देखते बढ़ते बढ़ते 25, 50, 100, 200, 300 तक की संख्या लगभग सत्संग की हो गई कुछ वर्षों में। और उनमें आने वालों में भी एक बहुत कुशाग्र बुद्धि की कन्या थी जिनका नाम राधा था, राधे। उसको चूंकि ओम ध्वनि से ये सत्संग शुरू होता था तो बाबा को सब ओम बाबा कहते थे और इनको ओम राधे, और स्नेह से इनका नाम ममा। तो वो पिताश्री हुए, ये मातेश्वरी। कहने में बहुत छोटे, बाबा की आयु 60 वर्ष से अधिक और ये बच्ची लगभग 15-16 साल की ध्यान में आई, ज्ञान में। लेकिन इन दोनों के पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती के माध्यम से इस संस्था का निर्माण शुरू हुआ, और जिसे जैसा बताया ओम मंडली के नाम से जानते थे। और भी और बहनें आने लगीं, जिनमें एक दादी प्रकाशमणि जी थे, वो उनका ये चित्र दिखाया गया है। ये सब उनके बड़ेपन के पिक्चर हैं। शुरू में जब आए तब तो सब ये और 16-17-18 साल के बहुत ही कम आयु के वो थे। इस प्रकार से ये सत्संग आगे बढ़ने लगा ये। और ये ही अलौकिक परिवार जो मैंने बताया आपको, बढ़ते बढ़ते लगभग ये सत्संग 100-200-300 पहुंच गया। ये उस समय ये बता रहे हैं, ये कन्याएं ये सब दिखा रहे हैं, छोटा सा परिवार शुरू का उस समय का बाबा के। अलौकिक, एक होता है लौकिक परिवार, लौकिक माता पिता भाई बहन आदि होते हैं परिवार में, उन सब के तो हम और आप सब अनुभवी हैं ही। लेकिन अलौकिक परिवार, कोई लौकिक में संबंध नहीं थे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ये था, सभी को दीदार होते थे, साक्षात्कार होते थे, ध्यान में जाते थे, उनके जीवन में पवित्रता की प्रेरणा आती थी और सब पवित्रता का पालन करते करते ये बाबा का अलौकिक परिवार बढ़ता गया बढ़ता गया। और ये धीरे धीरे इन लोग बच्चियों ने बहनों ने लौकिक पढ़ाई भी जिन्हें करनी थी करी, और सत्संग बढ़ता गया। धीरे धीरे जब और ये बड़े हुए तो उन्होंने अपना जीवन इस ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित किया। समर्पित माने निश्चय किया उन्होंने कि हमें विश्व परिवर्तन का कार्य, जो बाबा ने भी देखा, इनमें से अधिकतर बहनों ने भी देखा, और मुझे भी अनुभव है कि आसाम में जब मैं गया था ONGC में, पोस्टिंग मेरी आसाम में शिव सागर में हुई थी, और वहाँ पर ज्ञान दिया बहुत सारे बच्चियों से लेकर बूढ़े, बस ध्यान में चले जाते थे। ध्यान में जाके बाबा को देख रहे हैं, मम्मा को देख रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रहे हैं, नई दुनिया को, जिनका कोई वो बैकग्राउंड नहीं था, तो बहुत उन्हें भी आश्चर्य होता था। छोटी बच्चियां भी, अगर कोई दूसरा कहे तो लगेगा कि बच्चों को पढ़ा दिया है, लेकिन उनके ही अपने बच्ची पोती पोता आदि आदि ध्यान में जाकर ऐसे देखते थे। तो ये है कराची का क्लिफ्टन बीच। बाबा सत्संग जब ये बताया ना अनडिवाइडेड इंडिया में, उस समय ये सब सत्संग चल रहा था। ये सब कोई कराची में रहते थे और कराची में सत्संग में बाबा इन्हें फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते थे, सी बीच पर ले जाते थे। जैसे इंडिया में ना बॉम्बे में जुहू बीच वगैरह आदि जाते हैं, ऐसे कराची में क्लिफ्टन बीच बहुत प्रसिद्ध है। तो सब ये देख रहे हैं ना आप, इतने सब बहने भाई लोग बच्चे, अधिकतर बहने थी, वो सब जाते थे और फिजिकल एक्सरसाइज भी करते थे, साथ साथ सी बीच पर बैठ के योग ध्यान भी करते थे। एकांत वातावरण, सामने समुद्र बेहद का, शांति का, क्योंकि लिटिल अर्ली मॉर्निंग जाते थे तो अर्ली उस समय ये होता था, नहीं तो शाम तक तो बहुत भीड़ हो जाती है, सारे लोग देखते हैं, तो एकांत का वातावरण भी मिलता था, वहां पर ध्यान लगाते थे सब। और वो योग तपस्या करते करते धीरे धीरे इन्होंने और भी परिपक्वता आती गई। तो ये बाबा मामा का जो पिक्चर दिखाया है, ये बाबा मामा के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की धीरे धीरे स्थापना हुई। और उसके बाद फिर ये जो है कराची में 14 साल तक 1936 से लेकर के 1950 तक 14 साल तपस्या की है, वहीं पर रहे। बाहर की दुनिया से कोई नहीं लगा, मतलब बस ये बहने साथ यज्ञ में रहते थे, लगभग 300-350 भाई बहन, और वहाँ तपस्या करते थे। एंड इन बिटवीन 1947 में आपको मालूम है भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, और उसके बाद भी ये 3 साल तक वहाँ रहे, 47 से 50 तक। तो इनके बहनों के भाइयों के माता पिता जो भारत में थे, क्योंकि अधिकतर तो हिंदू या वही थे, पाकिस्तान तो भाई मुस्लिम देश है, पता नहीं कैसे होंगे हमारे बच्चे वहाँ पर, तो उनको चिंता होती थी। वो बार बार बाबा को कहते थे, बाबा आप भारत में आ जाइए। तो बाबा ये कहते थे, अच्छा परमात्मा शिव जो आज्ञा देंगे वो वैसा करेंगे। और इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा, और इन्होंने सब 1950 तक वहाँ रहे। विभाजन के भी 3 साल बाद पाकिस्तान की सरकार ने तो सब प्रकार का उस समय सहयोग दिया, 47 से 50 तक बहुत इन्हें निवेदन किया, आप यहाँ रहिए, कोई तकलीफ हो आप बताइए, किसी चीज की कमी हो। लेकिन परमात्मा शिव का, मैं हम लोगों ने बताया ना, शिव का आदेश था कि नहीं, अब आप सब लोगों को भारत में शिफ्ट करना है, भारत में जाना है। तो इस प्रकार से ये फिर भारत में आए। ये देख रहे हैं भारत आने की तैयारी, आप समझिए लगभग 300-350 लोग, उनका सामान पैक करना पूरा, वहाँ पर इतने सालों तक रहे किस प्रकार से, तो ये बताया पैकिंग वगैरह। और स्टीमर में वहाँ से कराची से ये प्रस्थान किया, ये इतना बड़े बड़ा स्टीमर में सामान भरा और भारत में ओखा बंदरगाह जामनगर के पास जो है वहाँ के लिए रवाना हुए। तो ये स्टीमर वहाँ से चला, रवाना हुआ, और ये स्टीमर के अंदर बैठे हुए हैं बाबा के साथ सब, कुछ बहन भाई वगैरह सब दिखाया जा रहा है। और इस प्रकार से जहाज में बैठे हुए ओखा बंदरगाह तक आए, ओखा में उतरे लैंड पर, वहाँ पर जमीन से फिर ट्रेन ली, और वो ट्रेन से आबू रोड है, ये ट्रेन से आबू आते हुए दिखाया गया है। अब आप समझिए इतने लोगों को 300-350 का सामान पूरा का पूरा, कितना साधारण बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सब शिफ्ट किया, सब आबू आते हुए आबू रोड पर ये स्टेशन पर उतरे। और उस समय तो आबू रोड, अब तो फिर भी बहुत बड़ा बन गया, तब तो एक तरह से इसमें शेड भी नहीं था, जैसे छोटे छोटे गांव के वो होते हैं स्टेशन, ऐसे आबू रोड में ये लोग सब उतरे। और आज भी मुझसे कोई पूछ रहे थे, भाई आबू रोड ही क्यों चुना, आबू रोड या माउंट आबू, क्योंकि परमात्मा का आदेश था कि आपको एकांत में पहाड़ों पर तपस्या करनी है। तो बहुत जगह से इन्हें ऑफर थे, क्योंकि सबके माता पिता भारत में थे, दिल्ली कलकत्ता बंबई मद्रास बड़े बड़े शहर, आप आइए यहाँ पर हम आपके लिए बड़े मकान का प्रबंध करते हैं। लेकिन परमात्मा का आदेश था कोई बड़ा नहीं शहर, एकांत में जाके आपको खुद भी तपस्या करनी है, भारतवासियों को भी तपस्या करके पवित्र पावन बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है, जैसा ब्रह्मा बाबा ने देखा था। इस कारण से ये सब तपस्या करते हुए ब्रह्मा बाबा, बाबा के साथ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, उनके द्वारा इन सब की पालना हुई, और मामा बाबा यज्ञ के पालनहार जैसे इन्हें सब मातेश्वरी और पिताश्री माता और पिता परिवार में होते हैं ना, वो इसमें बताया गया है। और फिर जब भारत में आके पांडव भवन में तो बाद में आए, उससे पहले भी एक दो मकान लिए लेकिन इनसफिशिएंट होते थे, आप समझिए कैसे। फिर उसके बाद ये पांडव भवन लिया गया, नाम बाद में पांडव भवन, इस रीति से पांडव भवन क्योंकि वहाँ भाई लोग अधिकतर रहते हैं, इसीलिए पांडवों का निर्माण, पांडवों के द्वारा नई सृष्टि के निर्माण का कार्य हुआ। ये बाबा ममा और साथ में उस अलग अलग शहरों से ग्रुप आते थे, फिर भारत में 1950 में जब आके पांडव भवन में सेट हो गए तो भारत के अनेक अलग अलग स्थानों में जहाँ इन बहनों भाइयों के माता पिता थे उन्होंने निमंत्रण अपने बच्चों को दिया, बच्चियों को, वो अपने घर जाते थे वहाँ सत्संग वगैरह करके, और वहाँ पर सेवा केंद्र की स्थापना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और ये सेवा केंद्र शुरू हुए, ये साथ में एक मनोहर इंदिरा दादी, अलग अलग दादियाँ थे मैंने बताया, जैसे जब यही बहनें बड़ी हुई और 14 साल वहाँ रहे और इसके बाद यहाँ आए, तो उन्हीं में एक सीनियर सिस्टर दादी मनोहर इंदिरा जी थे, उनके साथ ये फोटो दिखाया गया है। और ये बाबा ममा के साथ हमारा अलौकिक परिवार जो मधुबन में रहते थे, और बहनों को भाइयों को बाबा ने ज़्यादातर करके अपने अपने स्थानों पर भेजा कि अलग अपने परिवार में जाओ, अपने माता पिता संबंधियों को भी ईश्वरीय ज्ञान दो, सत्संग करो, तो वो अधिकतर फैलाओ भारत में शुरू हुआ। और इस प्रकार से सेवा केंद्रों की स्थापना का कार्य चलने लगा। तो कानपुर में, लखनऊ में, और इंसिडेंटली मैं तो खैर काफ़ी बाद में 62 में कांटेक्ट में आया, लेकिन उससे पहले जो बताया भी जा रहा था आपको, दादी शिवानी बहन का मैं लेक्चर अटेंड कर रहा था, तो उस वक्त शिवानी बहन भी ने भी बोला कि गुलजार दादी जी और अलग अलग दादियाँ, बाबा ने इनको भेजा जिनको बाहरी दुनिया का कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा जाओ लखनऊ जाओ, वहाँ पर गवर्नर से मिलो, चीफ मिनिस्टर से मिलो और उनसे उनको ज्ञान सुनाओ। तो आइए, जानते भी नहीं थे कि कौन गवर्नर होता है, कौन चीफ मिनिस्टर, पूछते हुए राजभवन वगैरह, और वहाँ पहुँचे, गोविंद वल्लभ पंत भी तब वहाँ पर हुआ करते थे, और बस बहने मिले और क्या कहें कि भाई हम तो आए वहाँ से माउंट आबू से, हमें तो कुछ मकान चाहिए, सत्संग करना है, यहाँ के लखनऊ वासियों को ईश्वरीय संदेश देना है। अब इतनी इनोसेंट बहने, इतने इनोसेंट भाव से कहते थे कि वहाँ पर वो क्या भी हम कहाँ से दें, नहीं नहीं आपके हाथ में तो वो है सारा। तो उन लोगों पर भी परमात्मा इन बहनों के मुख के द्वारा किस प्रकार से कहलवाता था। और उस जमाने में जो MLA हाउस था उसमें दो कम्प्लेक्स इन बहनों को दिए गए, इस प्रकार से लखनऊ में सेवा शुरू हुई। लखनऊ से पहले दिल्ली में हुई, कई स्थानों पर अलग अलग हुई, और वो हर एक जगह बिल्कुल निखालिस भाव से बहने जिन्हें दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं था, इतने वर्षों तक बाबा के पास वहाँ पर एक अलग रहे, तो ये अलग रहने के बावजूद धीरे धीरे बाबा ने इन्हें भेजा और ये आगे बढ़े। लखनऊ में हुआ इसी प्रकार से, कानपुर में मम्मा का स्वागत हुआ, मम्मा जाते थे, ये जो किनारे आगे सबसे दिखाया है ये दीदी मनमोहनी जी हैं, जिनका नीचे शांतिवन में मनमोहनी कॉम्प्लेक्स नाम से भी एक एरिया का निर्माण किया गया है। तो लखनऊ, कानपुर, ये मम्मा के साथ नीचे दादी प्रकाशमणि जी वो बैठे हुए हैं, क्योंकि मुख्य रीति से इन सब का उद्देश्य अपने को जो जैसे पावर ऑफ साइलेंस, शांति की शक्ति का भंडार बनाने का, क्योंकि मन जीते जगत जीत, भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, और मन को तब जीता जा सकता है तब जब मन में, जैसा हम मन को ऑर्डर करें मन उस बात को माने। तो शांति की शक्ति की मुख्य आवश्यकता थी, जिस प्रकार उस प्रकार वो अपना शांति की शक्ति से धीरे धीरे मामा और बाबा सब ज्ञान में बस ज्ञान योग की तपस्या। तो ये चित्र जो है मातेश्वरी जगदम्बा का 1950 से लेकर लगभग 1965 तक का बीच का, कि ममा की भी अवस्था धीरे धीरे विदेही, देह में रहते हुए भी देह के भान से न्यारे अशरीरी स्थिति, वो धीरे पीछे पीछे जो दिखाया है वो अशरीरी स्थिति विदेही अवस्था। और 24 जून 1965 को ममा ने अपना देह का त्याग किया। 24 जून 1965 कमी आयु लगभग 40-45 वर्ष आयु थी, उस समय ममा ने देह त्याग किया। और उसके बाद दीदी मनमोहनी जी को, क्योंकि अधिकतर इतने सब बहने भाई लोग थे, इतना बड़ा यज्ञ परिवार था, तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट सिस्टर दीदी मनमोहनी जी, बहुत धनी परिवार है, आपने बम्बई का हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, जसलोक हॉस्पिटल, वो लोकुमल और जसू दादा, ऐसा मतलब पूरा वो ये इन्हीं के ही दादा दादी थे, और इसीलिए जसलोक हॉस्पिटल उस परिवार से बिलोंग। ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े परिवार को बिलोंग करने वाले और साधारण से साधारण परिवार के भी सब इकट्ठे रहते थे, एक जैसा भोजन, एक जैसा वस्त्र, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और दीदी मनमोहनी जी के द्वारा यज्ञ की पालना आरंभ हुई, मुझे भी, क्योंकि 1962 में हम ज्ञान में आए थे, और तब बाबा मामा और दादी दीदी, और इसके बाद दीदी के द्वारा इन्हें हम स्नेह से दीदी, बड़ी दीदी कहा करते थे। और जब अलग अलग भारत के विभिन्न स्थानों में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि मुख्य मुख्य स्थानों में, लेकिन तभी भी सेवा केंद्रों की संख्या 100 के अंदर ही थी, 1969 के करीब। ये देखिए बाबा के साथ अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, पार्टी वाले, और वो यहाँ पर आके ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा के साथ सब मिल रहे हैं। और बाबा कैसे क्लास के बाद हर एक को प्रसाद दिया करते थे, ये उस समय का एक पिक्चर है। और अब पांडव भवन जाएंगे तो एक मुख्य द्वार है, एक बैक गेट पीछे, तो ये बाबा हर एक को गेट तक छोड़ने आते थे और हिलाते थे हाथ और सबको छुट्टी देते थे जिससे सब जाएं। और इसी कारण से इस ईश्वरी परिवार की बहुत तेजी से वृद्धि हुई, क्योंकि इतना निखालिस प्यार कहीं भी दुनिया में कोई भी किसी को दे नहीं सकता जितना यहाँ बाबा और मामा ने दिया। और बस सबको यही महसूस हुआ, बाबा यही कहा करते थे, क्योंकि देखने में तो ब्रह्मा बाबा ही आते थे, शिव बाबा तो देखने में नहीं आता, निराकार परमात्मा है। तो बाबा यही कहते थे, भाई सबका मालिक एक वो है, शिव परमात्मा है, ये रथ तो एक माध्यम है और ये भी आपकी तरह है। इसीलिए बाबा, ब्रह्मा बाबा कभी किसी को पैर नहीं छूने देते थे, कभी किसी को, बस बाबा स्नेह से ना मिलता था। और बाबा ऐसे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे हाथ फैला देते थे और हम लोग चुंबक की तरह खींचते हुए बाबा की बाह में समा जाते थे। ये सौभाग्य तो मुझे भी बहुत बार मिला है, बाबा के पास एकदम खींच के चले आने का, और फिर ध्यान में है अशरीर से विदेही होने का, अशरीरी स्थिति का अनुभव का। और अब सब जगह तो कितने, इतना बड़ा भारत देश तो सब आ भी नहीं सकते थे, तो बाबा पत्र, तो इस तरह आप जब जाएंगे पांडव भवन में, वहाँ एक झोपड़ी भी है जहाँ बाबा पत्र लिखा करते थे, तो ब्रह्मा बाबा पत्र लिखते हैं और वहां चार धाम की यात्रा का ये बाबा का पत्र लिखने का स्टाइल आपको कुछ पता चल रहा है। जो लाल लाल रंग के हैं लाल पेंसिल से बाबा सिंधी में, क्योंकि सिंधी भाषी मुख्य थे, बहुत फास्ट स्पीड से बाबा पत्र लिखा करते थे और दो लाइनों के बीच में जो जगह होती थी वो उसमें ये हिंदी ट्रांसलेशन एक इनके दादी बाबा के पीए के रूप में दादी ईशु जी कार्यरत रहे तो वो हिंदी में, क्योंकि मानो मेरे मैंने पत्र लिखा, अब मैं तो सिंधी जानता नहीं और बाबा ने सिंधी में पत्र लिखा और आया मेरे पास, लेकिन बीच में हिंदी ट्रांसलेशन होता था तो उससे पूरा पत्र का मजमून पता चल जाता था। तो ये पत्र जैसे लाल राइटिंग पेंसिल की बाबा की और बीच में हिंदी ट्रांसलेशन, ये पत्र का स्वरूप था। और फिर पांडव भवन में चार धाम हैं हमारे, आज भी भक्ति मार्ग में चार धाम प्रसिद्ध हैं और वास्तव में इस चार धामों का ही वो फेमस स्वरूप है। कौन से हैं चार धाम? आप में से कईयों ने शायद पांडव भवन गए होंगे, देखा होगा, नहीं देखेंगे तो कल आपका घूमने का दिन है, कल आपको पांडव भवन भी ले जाया जाएगा। तो एक तो ये झोपड़ी है जहाँ पर अधिकतर बाबा बैठ करके पत्र लिखा करते थे, दूसरा धाम है ये बाबा की झोपड़ी ही है, तीसरा ये हिस्ट्री हॉल है वहाँ पर, जिसे क्लासरूम और हिस्ट्री हॉल में हिस्ट्री यानी यज्ञ के इतिहास के सारे चित्र लगे हुए हैं और ये हिस्ट्री हॉल उसका दूसरे एंगल से पिक्चर, बाबा का कमरा और जगह सब हॉल, लेकिन बाबा ने अपने रहने के लिए इतना छोटा एक 8x8 का टाइप का 8x10 का कमरा था बस। बहुत बार लोगों ने हम लोगों ने बोला बाबा ये मकान बना है, कमरे नए बने हैं, कि नहीं नहीं बच्चे तुम बच्चों के लिए बाप ने बनवाए हैं बाबा ने, और बाबा तो इसी पर कभी भी, इतना सिंपल बाबा का जीवन, इतना त्यागमय तपस्वी जीवन बाबा का और बाबा का ये कमरा। और फिर बाबा ने 18 जनवरी 1969 को अपना देह त्याग किया, 18th January 1969। तो उस समय उसके बाद ये अव्यक्त बाबा जैसे अव्यक्त देह त्याग किया, देह को तो यहीं अग्नि को समर्पित कर देते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से बाबा जैसे आज भी हमारे सबके सम्मुख हैं, उनकी स्मृति में ये एक शांति स्तंभ पांडव भवन बनाया गया है और यहाँ आप पांडव भवन में जाएंगे वहाँ पर ये शांति स्तंभ। तो ये चार धाम है, ये चार धाम में ये शांति स्तंभ का एक धाम है, ये शांति स्तंभ का विराट स्वरूप वहाँ देखेंगे आप। तो ये चार धाम के चार पिक्चर बताए गए हैं, तो लेफ्ट साइड में जो इधर वो है एक शांति स्तंभ, दूसरा बाबा का कमरा, तीसरा हिस्ट्री हॉल जहाँ पर कि क्लासरूम जिसे बोलते हैं, और चौथा झोपड़ी। तो ये जैसे हम कहते हैं कि हमारे चार धाम की यात्रा, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन यापन किया, उस कमरे में रहे जिस कमरे में क्लास ईश्वरीय महावाक्य उच्चारते थे, जहाँ पर पत्र लिखते थे, एक एक जगह जो है इतनी स्पिरिचुअली चार्ज्ड है, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न है, आप वहाँ पर जाएंगे देखेंगे उस शक्ति की अनुभूति करेंगे, ये चार स्तंभ। उसके बाद बाबा जब 69 में शरीर छोड़ा तो बाबा ने के बाद दादी प्रकाशमणि ये मुख्य प्रशासिका बनी, पहले मम्मा बाबा, फिर उसके बाद मम्मा के बाद मनमोहनी दीदी और बाबा के बाद ये दादी प्रकाशमणि। तो ये दोनों दादी दीदी ने 1969 से लेकर आगे बहुत यज्ञ का विस्तार किया पूरे विश्व भर में, ये जो ये लंबे वाले हैं बड़े दिख रही हैं, ये दादी प्रकाशमणि है, और जिनका हाथ ऐसे दिखा ये दीदी मनमोहनी है। इनके दोनों के नीचे शांति स्तंभ शांतिवन में वहाँ पर आपको इनके जो यादगार स्थल है वो वहाँ बने हुए हैं। और वैसे तो अनेक अनेक दादियाँ प्रसिद्ध हैं, बहुत बड़ी दादियाँ, लेकिन ये आठ प्रमुख दादियाँ पूरे भारत भर में इन 350 में ये आठ मुख्य दादियाँ जिनके नाम में दादी मनोहर इंद्रा जी, दादी गंगे जी कानपुर में जो थे, दादी रतन मोनी जी जो लास्ट चीफ ऑफ दिस ब्रह्मा कुमारी, लास्ट ईयर ही इन्होंने शरीर छोड़ा, इसके बाद दादी गुलजार जी, हृदय मोहनी जी वो बताया जो भगवान का रथ के रूप में ब्रह्मा बाबा के बाद जिनके शरीर के द्वारा बाबा महावाक्य उच्चारते थे, दादी जानकी जी, प्रकाशमणि जी, निर्मल शांता जी और दादी चंद्रमणि, ये आठ मुख्य दादियां जैसे बताई गई हैं। और फिर 69 के बाद 70-71 से भारत के बाहर परमात्मा को तो विश्व परम पिता परमात्मा पूरे विश्व का पिता है, तो इसलिए विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए विदेशी भाई बहन में विदेशों में हमारे सेवा केंद्र खुलने शुरू हुए। और ये आप जो जाएंगे पांडव भवन में उसके सामने ये ओम शांति भवन है, ये वहाँ पर बताया गया है। ओम शांति भवन में वहाँ पर महामंडलेश्वरों का, जगत गुरु सन्यासी उनका सम्मेलन का ये एक चित्र है। तो वो हमारा पांडव भवन का बहुत ये कम्प्लेक्स है। समय के साथ साथ वो जब छोटा पड़ने लगा तो वहाँ से ये जहाँ आप लोग बैठे हैं ये ज्ञान सरोवर में, ये ज्ञान सरोवर की जमीन ली गई और इसका निर्माण किया गया 1992-3 में जमीन ली गई, 96 में ये बन के तैयार हुआ ये ज्ञान सरोवर। इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, आप बैठे हैं आपने देखा ही होगा, न देखा और देखिएगा। तो एक पांडव भवन, एक ज्ञान सरोवर और तीसरा ये ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, क्योंकि यहाँ की जनता के लाभ मिल सके पूरा, गरीब जनता जो है उसकी निःशुल्क सेवा की जा सके, तो ये रिसर्च सेंटर। फिर जब ऊपर का भी ऊपर पे प्रतिबंध लग गया भारत सरकार के द्वारा, हिल स्टेशन है यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता कुछ भी, पहाड़ी जगह है पेड़ भी नहीं काट सकते और प्रतिबंध लग गया, तो फिर शांतिवन में जगह ली गई और शांतिवन में ये डायमंड हॉल, शांतिवन में ये है, आप लोगों ने आते वक्त देखा होगा, ना देखा होगा तो शायद जाते वक्त आप वहाँ देख सकते हैं। ये डायमंड हॉल एक पिलर लेस हॉल है और लगभग 25,000 लोगों की बैठने की वहाँ व्यवस्था है, भव्य डायमंड हॉल, बहुत विशाल, कोई पिलर नहीं। फिर दादी प्रकाशमणि जी चीफ रहे 2007 तक, 1969 से लेकर 2007 तक दादी जी रहे, और 25 अगस्त 2007 में उन्होंने देह त्याग किया, उनकी स्मृति में ये प्रकाश स्तंभ जो बनाया गया है वो दिखाया गया। उसके बाद दादी जानकी जी, उस समय के दादी के बाद दादी जानकी जी, ये कुछ इंग्लिश की तो बात ही नहीं, ABCD भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन योग तपस्या में इतने महान कि इनके द्वारा भगवान ने विश्व के लगभग 140 देशों में विभिन्न सेवा केंद्र खुलवाए, सारे ऐसी भाषा, जर्मनी, जापान, पोलैंड वगैरह, रशिया, आप समझ सकते हैं वहाँ का ABCD भी न जानने के कारण वो कितनी डिफिकल्टी होती होगी, लेकिन अपनी योग तपस्या के बल से इन्होंने इतने स्थानों पर सेवा केंद्र खोले और इनके द्वारा भी यज्ञ का बहुत विस्तार हुआ। देखिए जन जागृति की विशाल सेवाएं उन्होंने, दादी जी ने और इन्होंने की हैं। और उसके बाद जब दादी जी ने देह त्याग किया, 104 वर्ष की आयु तक दादी जानकी जी रहे और 2020 में लगभग जब त्याग किया, फिर ये तीसरे दादी गुलजार जी, हृदय मोहनी जी, ये मुख्य प्रशासिका बनी। और इसके बाद ये इनका एक विशेष ये भी पाठ था कि परमात्मा शिव पहले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम के द्वारा ज्ञान दिया और फिर 1969 के द्वारा दादी हृदय मोहनी जी के तन के द्वारा शिव बाबा आते थे इनके तन में और इनके मुख से महावाक्य उच्चारते थे ये अव्यक्त। तो ऐसे बहुत विस्तार है लेकिन इतने तक बता के मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी इसमें केवल समझेंगे ही नहीं बल्कि इसका पूरा का पूरा अनुभव करके जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।